अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतं अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। ये देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन क्षरभाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव है, और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूं। व्याख्या, अधिभूतम क्षरो भाव है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। पुरुषश्चादि दैवतम या अधिदैवत माने अधिदैव पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबर है, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूं, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूं। यहां इस मनुष्य शरीर में कहने का तात्पर्य है कि इसमें भगवान की प्रेरणा को समझने की, स्वीकार करने की और उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। वैसे अन्य शरीरों में भी अंतर्यामी रूप से परमात्मा रहते तो हैं, परंतु उन प्राणियों में उस तत्व की तरफ दृष्टि डालने की सामर्थ्य नहीं है और मनुष्य शरीर में विवेक है। यह विवेक उन शरीरों में जागृत नहीं है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस शरीर के रहते रहते उस तत्व को प्राप्त कर ले, इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे। भगवान ने गीता में हृदि सर्वस्य विष्ठितम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशेर्जुन तिष्ठति आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बताया है। एम एव अत्र देहे कहने का तात्पर्य है कि दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते, पर मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। जहां मनुष्य राग द्वेष नहीं करता, उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, और जहां राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता, उसके कर्म बंधन कारक होते हैं। कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु है, तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में कह दिया है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म नहीं होते, श्रुति और स्मृति भगवान की ही आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममैवाग्ये, अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर करता है, अगर मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जिनको 18वें अध्याय में सहज स्वभाव नियत कर्म नाम से कहा गया है। यहाँ अर्जुन के लिए देह भृतांवरा कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना है। तीसरे और चौथे श्लोक में जो ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ का वर्णन हुआ है उसे समझाने के लिए जल का एक दृष्टांत दिया जाता है। जैसे आकाश स्वच्छ होता है तब हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ न दिखने पर भी वास्तव में वहां परमाणु रूप से जल तत्व रहता है। वही जल तत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बन जाता है। बादल में जो जल कण होते हैं उनके मिलने से बूंदे बन जाती है। उन बूंदों में जब ठंडक के संयोग से घनता आती है तब वे ही बूंदे ओले माने बर्फ बन जाते हैं। यह जल तत्व का स्थूल स्वरूप हो गया। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व है। अधियज्ञ व्यापक विष्णु भाप रूप से जल है। अधिदैव हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल है। अध्यात्म माने अनंत जीव बूंद रूप से जल है। कर्म माने सृष्टि रचना रूप कर्म वर्षा की क्रिया है और अधिभूत माने भौतिक सृष्टि मात्र बर्फ रूप से जल है। इस वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु भाप बादल वर्षा की क्रिया बूंद और ओले के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है पर वास्तव में एक ही है, इसी प्रकार एक ही परमात्म तत्व ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। इसी को सातवें अध्याय में समग्रम और वासुदेव सर्वम कहा गया है। तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ वासुदेव ही है। 7:19 इसमें भी जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तब शरीर और शरीरी प्रकृति और पुरुष ऐसे दो भेद हो जाते हैं। उपासना की दृष्टि से देखें तो उपास्य परमात्मा और उपासक जीव और त्याज्य प्रकृति का कार्य संसार ये तीन भेद हो जाते हैं। इन तीनों को समझने के लिए यहाँ 6 भेद किए गए हैं। परमात्मा के दो भेद ब्रह्म और अधियज्ञ निर्गुण और सगुण, जीव के दो भेद अध्यात्म और अधिदैव। अध्यात्म माने सामान्य जीव जो कि बद्ध है, अधिदैव माने कारक पुरुष जो कि मुक्त है। संसार के दो भेद कर्म जो कि परिवर्तन का पुंज है और अधिभूत जो कि पदार्थ है। ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधियज्ञ अधिदैव अधिभूत। विशेष बात, सब संसार में परमात्मा व्याप्त है। मया ततमिदं सर्वम्। 9:4 येन सर्वमिदं ततम्। 18:46 सब संसार परमात्मा में है। मई सर्वमिदं प्रोतम्। 7:7 सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। सब संसार परमात्मा का है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस प्रकार गीता में भगवान के तरह तरह के वचन आते हैं। इन सब का सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे बैठे, इस पर विचार किया जाता है। संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं, वे सभी संसार से छूटना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता, प्रत्युत सदा अशांति और दुख ही मिलता है। ऐसा मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, वहां दुख का लेश भी नहीं है, ऐसे शास्त्रों का कथन है और संतों का अनुभव है। अब विचार ये करना है कि साधक को संसार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है और परमात्मा को वह केवल मानता है, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष में दिखते नहीं। शास्त्र और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, बस इसी को मानकर साधक साधन करता है। अब उस साधन में जब तक संसार की मुख्यता रहती है, तब तक तो परमात्मा की मान्यता गौण रहती है। साधन करते करते ज्यों ज्यों परमात्मा की धारणा मुख्य होती चली जाती है, त्यों त्यों संसार की मान्यता गौण होती चली जाती है। परमात्मा की धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को यह स्पष्ट दिखने लग जाता है कि संसार पहले नहीं था और फिर बाद में नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में जो है रूप से दिखता है, वह भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे। वर्तमान में संसार के प्रतिक्षण अभाव में जाते हुए भी परमात्मा ज्यों के त्यों विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा भाव है। इस तरह जब संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब सत्य रूप से सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके होने से साधक सिद्ध कहा जाता है। कारण कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, ऐसी मान्यता संसार की सत्ता मानने से ही होती है। संसार की सत्ता साधक के राग के कारण से दिखती है, तत्वतः सब कुछ परमात्मा ही है। दूसरी बात, सत और असत सब परमात्मा ही है। सदसत चाहम अर्जुन है, परमात्मा न सत कहे जा सकते हैं और न असत कहे जा सकते हैं। न सत तन्ना सदुच्यते, परमात्मा सत भी है असत भी है और सत असत दोनों से परे भी है। सद असत तत्परंचयत। इस प्रकार गीता में भिन्न भिन्न वचन आते हैं। अब उनकी संगति के विषय में विचार किया जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है, उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उस तत्व को इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते, अर्थात वह तत्व इंद्रियां, मन और बुद्धि की परिधि में नहीं आता। हाँ, इंद्रियां, मन और बुद्धि उसमें विलीन हो सकते हैं, साधक उस तत्व में स्वयं लीन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस तत्व को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, अपनी सीमा में नहीं ले सकता। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक दो तरह के होते हैं, एक विवेक प्रधान और एक श्रद्धा प्रधान, अर्थात एक मस्तिष्क प्रधान होता है और एक हृदय प्रधान होता है। विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता रहती है और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुख्यता रहती है। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं रहती हो, ऐसे ही श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं रहता हो, प्रत्युत विवेक प्रधान साधक में विवेक की मुख्यता और साथ में श्रद्धा रहती है और श्रद्धा प्रधान साधक में श्रद्धा की मुख्यता और साथ में विवेक रहता है। दूसरे शब्दों में जानने वालों में मानना भी रहता है और मानने वालों में जानना भी रहता है। जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं। अतः किसी भी तरह के साधक में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। साधक चाहे विवेक प्रधान हो चाहे श्रद्धा प्रधान हो, पर साधन में उसकी अपनी रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता प्रधान रहती है। रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है, परंतु रुचि और श्रद्धा विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा विश्वास न हो तो ऐसे साधक को साधन में बड़ी कठिनता पड़ती है। इनमें रुचि होने से मन स्वाभाविक ही लग जाता है, श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आती है। विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है, उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है। श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है, उसकी रुचि सगुण साकार में होती है। जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वह यह कहता है कि परमात्मा तत्व न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। जो सगुण साकार को पसंद करता है वो कहता है कि परमात्मा सत भी है और असत भी है और सत असत से परे भी है। तात्पर्य यह हुआ कि चिन्मय तो हरदम ज्यों का त्यों रहता है और जड़ असत कहलाने वाला संसार निरंतर बदलता रहता है। जब ये चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, उसके साथ संबंध जोड़ लेता है, तब यह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। परंतु जब यह जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है तब इसको स्वतः सिद्ध चिन्मय तत्व का अनुभव हो जाता है। विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है। जड़ता का त्याग होने पर चिन्मय तत्व अवशेष रहता है, अर्थात नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है। श्रद्धा प्रधान साधक केवल भगवान के ही सन्मुख हो जाता है, जिससे वह जड़ता से विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है। विवेक प्रधान साधक तो शांत सदघन चिदघन आनंद घन तत्व में अटल स्थित होकर अखंड आनंद का अनुभव करता है, पर श्रद्धा प्रधान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सत असत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव, परिवर्तनशील एवं नाशवान क्रिया और पदार्थ मात्र क्षर भाव है, जो भगवान की अपरा प्रकृति है। ज्ञान में ब्रह्म के साथ एकता होती है और प्रेम में अंतर्यामी भगवान के साथ अभिन्नता होती है। भगवान ने यहाँ अंतर्यामी मन अधियज्ञ को अपना स्वरूप बताया है, अतः ब्रह्म तो विशेषण है और अंतर्यामी विशेष्य है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 14:27। तात्पर्य है कि जिसको गीता ने समग्र कहा है वह सबका रचयिता और नियंता अंतर्यामी मैं ही हूं। इसी अंतर्यामी को 14वें अध्याय के 3रे-4थे श्लोकों में मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम् दधाम्यहम् और अहम् बीज प्रद पिता पदों में अहम् पद से कहा गया है। गीता में ब्रह्म के लिए कहा है न सत्तन्ना सदुच्यते और समग्र भगवान के लिए कहा है सदसच्चाहम् अर्जुन सदसत् तत्परं च यत्। 11:37।